बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी अपने मित्रों और परिवारों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। इसके साथ अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब नए नियम बाइबल की पुस्तक से कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे वरदानों के विषय में। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेम वरदानों की क्षमता। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा विषय है प्रेम वरदानों की क्षमता। सच कहें तो यह अध्याय प्रेम का अध्याय है और अनेक विचारकों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास भी किया है। मैं सच कहूं तो मैंने इस अध्याय पर अपनी संपूर्ण सेवा में एक या दो बार ही प्रचार किया है। यद्यपि मैंने रेडियो पर बाइबल अध्ययन में इस पर शिक्षा दी है या अपने कलीसियाओं में या अपने मित्रों के बीच में शिक्षा दी है, परंतु यदि स्पष्ट कहूं तो यह अध्याय मेरी समझ और बौद्धिक क्षमता से परे है। सन 1884 में हेनरी ड्रामंड ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का लेख लिखा था जिसका शीर्षक था ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, संसार की महानतम वस्तु। वह मेरे मसीही जीवन में बहुत पहले मेरे हाथ में आया था और इस अध्याय अर्थात 13 पर यह एक सर्वोत्तम पुस्तक है। प्रेम, प्रेम शब्द इस संपूर्ण अध्याय में आता है। वह वास्तव में यूनानी शब्द अगापे से आया है जिसका अर्थ है प्रेम। इस अध्याय में प्रेम की परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी परिभाषाएं विनाशकारी भी होती हैं। प्रेम की परिभाषा देना इस अध्याय का गंभीर उल्लंघन है। यदि आप गुलाब की व्याख्या करते हैं तो आप वनस्पति विज्ञान में दी गई परिभाषा काम में ले सकते हैं, परंतु वह परिभाषा मुझे गुलाब का वह विवरण प्रदान नहीं करती है जैसा मैं गुलाब को जानता हूं। या आपने कभी सूर्यास्त की परिभाषा किसी से सुनी है? मुझे स्मरण है कि मैं नाव में खड़ा चांद को देख रहा था। वह दृश्य ऐसा रोमांचकारी था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काश मैं उसका चित्रण आपके लिए कर पाता, परंतु मेरे लिए यह संभव नहीं। इसी प्रकार यह अध्याय प्रेम का प्रदर्शन करता है, उसकी परिभाषा नहीं देता। मेरे प्रियो, यूनानी भाषा में प्रेम के तीन शब्द हैं। एक शब्द है यानी पहला इरोश, अर्थात लालसा। यह प्रेम की देवी और इरोश के लिए काम में आता है, या वीनस और क्यूपिड के लिए काम में आता है। आज इसका पर्यायवाचक शब्द है यौन। नए नियम में यह शब्द नहीं है। और दूसरा शब्द है फिलोओ, अर्थात लगाव या अनुराग। यह मनुष्य के लिए, भाई के लिए प्रेम है। इसमें मानवीय प्रेम की पराकाष्ठा है, शालीन प्रेम है। मित्रों, नए नियम में व्यक्त अगापे सर्वोत्तम शब्द है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय प्रेम। यह भावना प्रवण प्रेम से बढ़कर है। यह इच्छा में निहित प्रेम है। यह वह प्रेम है जो अपने कर्म को चुनता है। यह परमेश्वर की परिभाषा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं यहाँ इस अध्याय की रूपरेखा दे रहा हूँ। यह इस अध्याय के साथ अन्याय तो है, परंतु समझने में सहायक होगी। प्रेम की श्रेष्ठता उसका मूल है। पद 1-3, प्रेम की स्वाभाविक शक्ति उसका सद्गुण। पद 4-7, प्रेम का प्रकर्ष उसकी विजय। पद 8-13, मित्रों ध्यान दीजिए, यह अध्याय अध्याय 12 के विचार पर कैसे आगे बढ़ता है। वरदानों का दान, अध्याय 13 इन वरदानों के सामर्थ्य की चर्चा करता है। आत्मा के सब वरदानों का अभ्यास प्रेममय होना चाहिए। आइए हम देखेंगे प्रेम की श्रेष्ठता, उसका मूल्य। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गदूतों की बोलियां अर्थात वाक्पटुता। मैंने तो किसी स्वर्गदूत की वाणी नहीं सुनी, परंतु मेरे विचार में पौलुस ने उन्हें सुना था। सर्वोत्तम वाक्पटुता जिसमें प्रेम न हो, वह एक ध्वनि प्रसारण करने वाली घंटी है। डॉक्टर स्कुरोगी कहते हैं, प्रेम से रहित भाषा संगीत से विरक्त कोलाहल है। और मैगी कहते हैं, प्रेम से रहित चहचहाना आत्महीन ध्वनि है। आप खराब स्वरूप गा सकते हैं, परंतु प्रेम के बिना वह नर्क की सितकार है। मेरे मित्रों, प्रेम उसमें गहराई और अर्थ डाल देता है और भाषा को अर्थपूर्ण बनाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मित्रों ध्यान दीजिए, पहला पद मन की गहराई से उभरते प्रेम की चर्चा करता है और यह पद उसे मस्तिष्क से उत्पन्न दर्शाता है। ज्ञान अकेला पर्याप्त नहीं है, ज्ञान में प्रेम का होना आवश्यक है। मेरे विचार में आज यह बाइबल के विश्वासी कलीसियाओं की दुखद दुर्दशा है। उनमें बाइबल का ज्ञान है और बाइबल के सत्यों का बोध है, परंतु प्रेम की कमी है। यह कैसी भयानक बात है कि कलीसियाओं में अफवाहें, कड़वाहट और घृणा भरी हुई हैं। मित्रों, ज्ञान के साथ प्रेम होना अति आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मित्रों, यह प्रेम वास्तव में इच्छा का कृत्य है। पहला पद में हम देखते हैं प्रेम हृदय से होता है, दूसरा मस्तिष्क से होता है और तीसरा है इच्छा से। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। यद्यपि हमें बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहना है, उनकी व्यवहारिक प्रेम पूर्ण होना चाहिए। केवल परमेश्वर का आत्मा यह कर सकता है। मेरे मित्रों, ऐसा कीजिए, शून्य का एक क्रम लिखें। वाक्पटुता अपने आप में शून्य है, भविष्यवाणी अपने आप में शून्य है, ज्ञान भी शून्य है, विश्वास भी शून्य है, बलिदान शून्य है, शहीद होना भी शून्य है। इन सब शून्यों का योग करने पर प्राप्त अंक भी शून्य ही होता है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। परंतु यदि आप उस शून्य की बाईं ओर 1 का अंक लिख दें, तो वह अर्थपूर्ण हो जाता है। अतः आत्मा के प्रत्येक वरदान में प्रेम को जोड़ना आवश्यक है। प्रेम के बिना आपका वरदान निकम्मा है। मेरे मित्रों, प्रेम की स्वाभाविक शक्ति या उसका सद्गुण, आइए हम देखें। पहला कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। देखिए, प्रेम धीरजवंत है अर्थात प्रेम सहनशील है, दयालु होता है। दया के बिना प्रेम करना असंभव है। दया बिना प्रेम वैसा ही है जैसे फूलों के बिना बसंत, उष्मा बिना अग्नि। पौलुस के प्रबोधन पर ध्यान दें। इफिसियों की पत्री 4:32 में वह लिखता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे मित्रों, प्रेम डाह नहीं करता अर्थात प्रेम संतोष करता है। हम जानते हैं कि जीवन में असमता है और कुछ लोग धनवान हैं और कुछ लोग गरीब। मैं विश्वासियों की बातें सुनता हूँ, परमेश्वर ने उसे कैसा धनवान बनाया है, मुझे क्यों नहीं बनाया। मेरी समझ से प्रेम समझता है कि मनुष्य में असमानता है और अपने आप में संतोष धारण करता है। आपको स्मरण होगा कि सबसे पहली हत्या कैन ने हाबिल की थी। कारण था ईर्ष्या, डाह ही था जिसके कारण उसने अपने भाई को मार डाला। मेरे मित्रों, हम यूहन्ना बपतिस्मा के उदाहरण के बारे में जानते हैं। उसका मनन करने से हमें पता चलता है कि यीशु की ख्याति को देख उसमें डाह उत्पन्न नहीं हुआ था। यूहन्ना 3:30 में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जब हम यह समझ लें कि जीवन में हम सबका भाग्य अलग अलग है और सबके लिए प्रभु की सेवा अलग अलग है, तो हम प्रभु यीशु के शब्दों पर ध्यान देंगे जो उसने यूहन्ना 21:22 में कहे हैं, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। वेकन का कहना है कि डाह एक अधम लगाव है और सर्वाधिक भ्रष्ट है। मेरे मित्रों, डाह से रहित प्रेम का एक और उदाहरण योनातान है। यद्यपि वह राजकुमार था और जानता था कि इसराइल का अगला राजा दाऊद होगा, उसने दाऊद से डाह नहीं रखा। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। मोफिट ने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया है, प्रदर्शन नहीं करता अर्थात प्रेम प्रदर्शन नहीं करता। प्रेम बड़ी बातें नहीं करता, वह स्वाभिमान प्रदर्शन नहीं करता है। बड़ी बातें करने में अशिष्टता है। मेरे प्रियो, किसी सभा में एक युवा प्रचारक ने खड़े होकर के कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं प्रशिक्षित प्रचारक नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं और मुझे इस पर घमंड है। उसके बिशप ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास घमंड के लिए बहुत कुछ है और हे युवा, घमंड करना खतरनाक है, चाहे आप अपने अज्ञान में ही घमंड क्यों ना करें। आगे हम देखते हैं कि प्रेम फूलता नहीं अर्थात हवा में नहीं उड़ता है। आप जानते हैं कि टायर की हवा में चलना और टायर की हवा निकल जाने पर गाड़ी चलाना कैसा होता है। विश्वासियों में अनेक हवा निकले हुए टायर के जैसे हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाले अनेक हैं। हवा निकल गई तो कुछ नहीं रह जाता है और वे फुस हो जाते हैं अर्थात सब कुछ खत्म हो जाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:5 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मेरे प्रियो, प्रेम अनरीति नहीं चलता है अर्थात वह विचित्रता का प्रदर्शन नहीं करता है। यह सच है कि पहला पत्रस में विश्वासियों के विचित्र कहा गया है, परंतु उनका व्यवहार विचित्र ना हो इसका शाब्दिक अर्थ है उसकी अपनी संपत्ति होने के लिए मनुष्य। हमें भद्र व्यवहार करना चाहिए, हमें अभद्र नहीं होना है, हमें विचित्र मनुष्य का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें शिष्टाचार प्रदर्शन करना है। मित्रों, आज दुर्भाग्य से धर्म में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आकर्षक धर्म कहा जा सकता है, परंतु प्रेम अनरीति नहीं चलता। जी हाँ, आगे देखते हैं कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम धर्म के उद्देश्य को जांचता है अर्थात वह पूछता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सेवानिवृत्त के पश्चात बहुत से लोग अपने मन को ऐसे परखते हैं जैसे पहले कभी नहीं परखे थे। मित्रों, मैंने अपने उद्देश्यों को जांचा है, क्या मैं मसीह के प्रेम के कारण ऐसा कर रहा हूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम सेवा का भेद है। प्रेम झुंझलाता नहीं, वह क्रोधी स्वभाव का नहीं रखता है। झुंझलाना सदाचारी का दुराचार है। मुझे दुख है कि यह हम में से अधिकांश का दुराचार है। और आगे देखते हैं कि प्रेम बुरा नहीं करता। यह बड़े दुख की बात है कि मनुष्य पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे भी विश्वासी हैं जो दिल खोलकर गंदे बांटते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों को भी गंध कर देते हैं, वे जो कहना चाहते हैं व्यक्त कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:6 में हम आगे पढ़ते हैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम अपराध से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंद मनाता है। आपके मन का आनंद क्या है, बुराई या भलाई? यदि आप अपने बैरी की बुराई सुनते हैं तो क्या आपको आनंद प्राप्त होता है या आपके बैरी का कष्ट आपको दुख पहुंचाता है? पहला कुरिन्थियों 13:7 में आगे लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। जी हाँ, सब बातें सह सकता है। यहाँ सहना शब्द वास्तव में सुरक्षा का अभिप्राय रखता है। प्रेम दूसरों के लिए छत्र छाया बनता है, सब बातों की प्रतीति करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम में मूर्खता का भोलापन होता है। इसका अर्थ है कि प्रेम किसी पर शक नहीं करता, सब बातों की आशा रखता है। जी हाँ, प्रेम आशावाद है। सब बातों में धीरज धरता है, परखे जाने पर वह साहस नहीं खो देता। हमने देखा है कि प्रेम अस्पर्श गम्य है, परंतु उसे स्पर्श गम्य होना है, उसे जीवन एवं कार्यों से प्रकट होना है, उसे सहनशीलता, दया, ईर्ष्या रहित, घमंड रहित प्रदर्शन करना है। मित्रों, हम आगे देखते हैं, प्रेम का प्रकर्ष उसकी विजय है। पहला कुरिन्थियों 13:8 में लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। जी हाँ, प्रेम कभी विफल नहीं होता है। और यही कारण है कि अध्याय के अंत में वह कहता है, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम जो अस्थाई है, वह अपरिवर्तनीय है। एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है, मैंने एक बार प्रेम किया। उसने लिखा, उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया जिसने स्वप्न में सोचा हो कि उसने प्रेम किया। और प्रेम समय एवं स्थान की सीमा के परे देखता है। प्रेम अनंत समय का आलिंगन करता है। प्रेम अमर है, वह कभी पराजित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। जो प्रेम कामुक हो वह फूस की तरह जल जाता है। यही कारण है कि आज अनेक तलाक हो रहे हैं। ऐसों का प्रेम दो दिलों को जोड़ने वाला नहीं होता है। मित्रों, प्रेम अनंत है, स्थाई है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। यह कैसा अद्भुत प्रेम है! उसका प्रेम समय और स्थान से या के परे देखता है और अनंत समय का आलिंगन करता है। मसीह ने प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। आप उसे प्रेम करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई पापी नहीं जिसने अक्षम्य पाप किया हो। आप अविश्वासी हो तो भी वह आपसे प्रेम करता है। आप जितने भी पापी क्यों ना हो, वह आपसे प्रेम करता है। आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, वह अब भी आपसे प्रेम करता है। आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते हैं। आप नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन वह आपसे प्रेम करता है। आप छाता लगाकर वर्षा से बच सकते हैं, परंतु आप वर्षा को रोक नहीं सकते। जी हाँ, इसी प्रकार आप परमेश्वर के प्रेम को करने से नहीं रोक सकते हैं, चाहे आपने पाप या अविश्वास की छतरी क्यों ना लगा रखी हो। मेरे मित्रों, बच्चों से यह कहना कि परमेश्वर उन्हें प्रेम नहीं करेगा एक सर्वथा अनुचित बात है। मैं बच्चों के संडे स्कूल की कक्षा में था। बच्चे बहुत शैतान थे, मैं अकेला ही अच्छा बना हुआ था। हमारा शिक्षक कहता है, बच्चों यदि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करेगा। मैं सोचता था कि निश्चय ही परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, परंतु मेरी घृष्टता के उपरांत भी उसने मुझसे प्रेम रखा है। यह सोचना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कैसी अद्भुत बात है। क्या आज आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आगे हम देखते हैं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे, अर्थात पूरी हो जाएंगे, वे इतिहास बन जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। उदाहरण के लिए, जो विज्ञान मैंने स्कूल में पढ़ा था वह अब पुराना हो गया है। आज के विज्ञान के स्थान पर कल का विज्ञान आ जाएगा। जी हाँ, ज्ञान प्रगतिशील है, वह विलोप होता जाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पौलुस यही कहता है। आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, लिखा हुआ है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मैं स्वर्ग में अपने प्रेमी जनों को पहचानूंगा? निश्चय ही आप पहचानेंगे, इसका धर्मशास्त्र में क्या प्रमाण है? अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, आपने मुझे कभी नहीं देखा है। यह भी संभव है कि आप सोचे कि आपने मुझे देखा है। वह एक पैंट शर्ट के ऊपर सिर और दो हाथ बाहर निकले हुए हैं। आपने वास्तव में मुझे नहीं देखा है और मैंने आपको भी नहीं देखा है, क्योंकि दर्पण में धुंधला दिखता है, परंतु वहां आमने सामने हम एक दूसरे को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज तो मैं आंशिक रूप से देखता हूं, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। किसी ने जी कैम्बल मॉर्गन से पूछा, आपके विचार में क्या हम अपने प्रियो को पहचानेंगे? डॉक्टर मॉर्गन ने अपनी बर्तानिया शैली में कहा, मैं स्वर्ग में यहां से बड़ा मूर्ख नहीं होना चाहता हूं, और मैं अपने प्रिय जनों को यहां पहचानना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ेंगे जो इस अध्याय का आखिरी पद है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 पद, लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे विश्वास का उद्देश्य पूरा होगा, हमारी आशाएं भी पूरी होंगी, और आशा करने को कुछ नहीं रह जाएगा, अतः आशा भी जाती रहेगी, विश्वास की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, तथापि प्रेम बना रहेगा। सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम मसीही शब्दावली के सर्वोत्तम शब्द हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय में पौलुस अस्पर्शमय प्रेम का वर्णन नहीं कर रहा है। योहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु का प्रेम अनंत प्रेम है। मेरे मित्रों, मसीह यीशु आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा। वह आज भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वह इस जगत में आया सिर्फ प्रेम करने के लिए, उन पापी मनुष्यों को जो हम जैसे तुच्छ और निकम्मे लोग थे, जो प्रतिदिन बुराइयों की जड़ में घुसते चले जा रहे थे, हमसे प्रेम किया और हमारे छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए मनुष्य का रूप लिया, और आज से 2010 साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आया। उसने परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया, और इतना ही नहीं, उसने इतना अधिक प्रेम किया कि हमारे पापों की सजा जो मुझे और आपको मिलने चाहिए थे, उसने अपने ऊपर में ले लिया। जी हाँ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परिवार में दो बच्चे थे, और बचपन में उसके माता पिता मर गए, और ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे अपने आप से बढ़ने लगे, और छोटा बेटा बदमाश होता चला गया, दिन निकलने गए, और एक समय ऐसा आया कि उसने ऐसा खून कर दिया, और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस उसे पकड़ने के लिए घर आई, और इस समय हम देखते हैं कि वो पूरे लहूलुहान से ग्रसित था। उसके भाई ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब उसके बड़े भाई ने कहा, एक काम करो। उसने कहा, अपने वस्त्र उतार दो। उसने अपने वस्त्र उतार दिए, और बड़े भाई ने उसके वस्त्र को पहन लिया, और उसके हाथ में जो चाकू था जिसमें खून थे अपने हाथ में ले लिया, और दरवाजा खोला तो पुलिस ने देखा और उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। उसे बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था, और एक समय ऐसा आया मेरे मित्रों कि अदालत में यह प्रमाणित हुआ और उसे दोषी करार दिया गया, उसकी मृत्यु की सजा हुई, और वह फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जब उसके भाई को पता चला तो बहुत दुखित हुआ। उसने इस बात को जान लिया कि दोषी मैं हूं, लेकिन मेरे बदले में मेरा भाई मर गया। हाँ मेरे मित्रों, हम जैसे दोषी जो आज पाप करते हैं, चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, लुचपन, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि आप और मैं पापी हैं और इसकी सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उस वस्त्र को वो पहन लिए और मेरे पाप रूपी वस्त्र या खूनी रूपी वस्त्र को अपने ऊपर डाला और मेरे बदले में और आपके पापों के बदले में उन्होंने सजा ली, क्रूस पर मर गए, उस पवित्र लोहे को बहा लिया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आज भी प्रेम करते हैं। मृतकों में से वो जी उठे और आज वह आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप उसके पास में आएंगे, अपने पापों को स्वीकार करेंगे, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हो गई है, तो निश्चय ही वो आपके पापों को क्षमा कर आपके जीवन में शांति देंगे। चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और मित्र कोई भी क्यों ना हो जो नहीं जानते हैं, प्रभु जानता है। जी हाँ, वह प्रेमी परमेश्वर है, वह आपसे प्रेम करता है। क्या आज आप उसके निकटता में आएंगे, अपने जीवन को उसके लिए अर्पित करेंगे? आज ऐसा अवसर शायद आपको ना मिले। मेरे मित्र, आइए हम प्रभु के पास आएं, अपने आप को अर्पित कर दें और इस महान प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करें। इससे बड़ी आशीष की बात और शायद कभी ना हो। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। आज की रात परमेश्वर से आप बातचीत करेंगे और निश्चय ही वह आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहां से भी प्यारा है। चल